दौला
पुस्तक चौदवी
लेक्चर नंबर 15
ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आययाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाऊणं सिद्धे विबुद्धशयले अच्युतबहिर्बन्धनोन्मुक्ते भक्तिये अहं नमिऊं पुनो पुनो बंधनम वोचम।
आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धौला नामक टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। इसमें जो पांचवा खंड है उसका नाम है वर्गणा खंड, और इस चौदहवें पुस्तक के पृष्ठ संख्या 129 पर हम आ गए, 129। यहाँ जो वर्गणा प्ररूपणा के बाद वर्गणा निरूपणा चल रही है, तो ये जो वर्गणाएं है वो कैसे उत्पन्न होती है, तो बताया था कि भेद से होती है, संघात से होती है और भेद संघात से होती है। तो कौन सी वर्गणा काहे से उत्पन्न होती है, तो जो एक प्रदेशी पुद्गल परमाणु
भेद से
वर्गणा जो है, परमाणु पुद्गल द्रव्य वर्गणा
भेद से होती है,
तो भेद से ही होगी, क्योंकि परमाणु तो संघात से नहीं हो सकता। द्विप्रदेशी त्रिप्रदेशी ऐसा कहना है तो ऊपर के भेद से और नीचे के संघात से, और स्वस्थान में भेद संघात से, ऐसे हमने कथन किया था। तो ये कहाँ तक लिया था, तो ध्रुव स्कंद और वो शांत निरंतर तक गए थे। फिर जो सचित्त वर्गणा है उसकी चर्चा अपनी चल रही थी। अभी हम यहाँ आए 129 पेज पर। देखो पर एक परमाणु को एक प्रदेशी वर्गणा कही, द्विप्रदेशी स्कंद को दूसरी वर्गणा कही, तीन प्रदेशी स्कंदों को तीसरी वर्गणा, तो वो सबको मिलकर संख्यात वर्गणा कहा, संख्यात अनुवर्गणा। स्कंदों की बात है, केवल वो एक प्रदेशी वो परमाणु है, बाकी सारे स्कंद है। नहीं नहीं नहीं, जीव के प्रदेशों के साथ कब हो गए, जब प्रत्येक शरीर वर्गणा, बादर निगोद वर्गणा और सूक्ष्म निगोद वर्गणा, वहाँ जीव के साथ संयोग है। बाकी आहार वर्गणा भी तभी, जब तक ग्रहण नहीं किया तो जीव के साथ संयोग नहीं था उसका, जीव ने उसको ग्रहण किया आहार वर्गणा को और फिर शरीर रूप ढाला, तो ये वो इधर प्रत्येक शरीर वर्गणा हो जाएगी या बादर निगोद वर्गणा हो जाएगी। तीन बात, इसलिए बादर निगोद वर्गणा, सूक्ष्म निगोद वर्गणा और प्रत्येक शरीर वर्गणा, इनको सचित्त वर्गणा कहा और बाकी सारे अचित्त वर्गणा है। और उनमें से जो परमाणु पुद्गल छूटे पड़ जाते हैं तो वो अचित्त हो जाते हैं, यानी ये यहाँ कहना क्या चाहते हैं कि नीचे की वर्गणाओं के संघात से प्रत्येक शरीर वर्गणा उत्पन्न नहीं होती। ये पेज नंबर 129 पर पहला वाक्य, क्यों नहीं होती है, क्योंकि जीव जो नीचे के वर्गणाओं को ग्रहण करता है तो वो प्रत्येक शरीर वर्गणा ऑलरेडी वहाँ एग्जिस्टिंग है, उसके साथ जुड़ जाता है, यानी केवल आहार वर्गणा और आहार वर्गणा मिलकर, क्योंकि वो तो लोक में पड़ी है ना, आहार वर्गणा भी पड़ी है, तेजस वर्गणा भी पड़ी है, कारमाण वर्गणा भी पड़ी है, वो एक साथ जुड़ जावे और प्रत्येक शरीर वर्गणा हो जाए, ये ऐसी नहीं बात बनती, ये तो कहना चाहते।
नहीं नहीं आप नहीं,
अभी यहाँ सर्वत्र आहार वर्गणाएं भी पड़ी है, तेजस वर्गणाएं भी पड़ी है, कारमाण वर्गणाएं भी पड़ी है, तो वो आपस में जुड़कर प्रत्येक शरीर वर्गणा हो जाएगी।
नहीं,
यही कह रहे, उनके संघात से प्रत्येक शरीर वर्गणा नहीं होती है। हाँ, जीव आहार वर्गणा ग्रहण करता है, तो जीव ने ग्रहण किया तो जीव के साथ ऑलरेडी तेजस और कारमाण के दो पुंज और उनके विसृतोपचयों के दो पुंज विग्रह गति में भी थे, वो जब आहार वर्गणा उसने ग्रहण की तो उसके साथ उसका विसृतोपचय सहित वो प्रत्येक शरीर वर्गणा वहां पर भी कहलाएगी, यहाँ पर भी कहलाएगी। यानी वो जुड़कर प्रत्येक शरीर वर्गणा के साथ आकर जुड़े हैं, परंतु आहार वर्गणा का आपस में संयोग सद्भाव ऐसा समुदाय बताया ना उन्होंने, क्या शब्द आया उनको, समुदाय समागम, समुदाय समागम आपस में मिल जावे उसके प्रत्येक शरीर वर्गणा हो गए, ऐसा नहीं है। ये जो कल रात को शाम को वो सुशीला बेन का प्रश्न था ना, वो डॉक्टर नहीं मानती है, वो तो ऐसे वो पुद्गलों के वो संयोग से फिर जीव उत्पन्न होता है, उसमें शक्ति है। अरे उसमें कैसी शक्ति है, जीव ने उसके साथ,
हाँ,
जीव के साथ ऑलरेडी वो वर्गणाएं थी, कौन सी, प्रत्येक शरीर वर्गणा, विग्रह गति में भी, तो विग्रह गति में भी उसके साथ वो तेजस कारमान का पुंज और उनके विशेष उपचय थे बताए उन्होंने, बादर निगोद वर्गणा भी बताई, क्योंकि एक पुंज में वो आते हैं। ये बात कल आई थी कि विग्रह गति में भी उसको कहेंगे हम, ये दो तीन बार वो बात आई थी विग्रह गति की। नौकर्म का ग्रहण तो पहले समय से होता है, पर्याप्ति पूरी होने पर नहीं होता, पहले समय से, हाँ पहले समय से ही होता है, योग से वो तो औदारिक शरीर के परमाणु योग से ग्रहण होते हैं, यानी वहां पहुंचते ही शरीर नाम कर्म का उदय शुरू होता है, औदारिक शरीर नाम कर्म, प्रत्येक शरीर नाम कर्म, साधारण शरीर नाम कर्म, वहीं पर शुरू हो जाता है इसका।
खाली मोड़ में नहीं होते,
वही तो मोड़ कारमान का योग में नहीं होता,
नहीं
है
होते।
परंतु वहां पर भी देखो विग्रह गति में भी उनको स्वीकार किया था। ये प्रत्येक शरीर वर्गणा की बात आई थी ना, उसमें ये बात उन्होंने बताई थी जहां उसकी चर्चा थी वहां पर। मिलेगा फिर, अभी हम आगे पढ़ते हैं क्योंकि केवल वो अचित्त अचित्त वर्गणाएं मिलकर वो नहीं बनती है, क्योंकि ऑलरेडी जीव के साथ वो कारमान कारमान तेजस है और उसके साथ नए परमाणु आकर जुड़ जाते हैं। देखो सचित्त ने उसके साथ जीव है वहां पर, उसको सचित्त कहेंगे। प्रत्येक शरीर परमाणु पुद्गल द्रव्य वर्गणा किसको कहेंगे, कि जो प्रत्येक शरीर वाले जीव है जिसके आधार से निगोद नहीं है, बादर निगोद जिसके आधार से नहीं है उसको प्रत्येक शरीर कहेंगे। वो है पृथ्वी कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, तेज कायिक, और फिर अप्रतिष्ठित प्रत्येक भी ले लेंगे उसमें, और देवनारकी के शरीर भी लेंगे, आहारक शरीर भी लेंगे, वो कैसे हो गए प्रत्येक शरीर। और कहाँ लेंगे प्रत्येक शरीर, सहयोगी और अयोगी को, क्योंकि बादर निगोद से रहित है, और वहाँ जीव और उसके जो पुंज है कौन से, औदारिक तेजस कारमान या वैक्रिय तेजस कारमान, उसको प्रत्येक शरीर वर्गणा का, वो सचित है क्योंकि जीव के साथ वहाँ जुड़ी हुई है, और बाकी जो ये सारे पड़े हैं वो अचित है, जीव के साथ संबंधित वो नहीं है।
सचित वर्गणाएं पांच है,
कौन सी,
नहीं सॉरी, आहारक तेजस कारमान,
वो सारी अचित्त है। अब क्या फिर घोटाला कर रहे, जीव उनको ग्रहण करता है तब वो जीव के ऑलरेडी जो सचित हो जाते, क्योंकि जीव के वो कारमान तेजस के साथ वो जुड़ जाते हैं, तब उसको सचित, पूरी वर्गणा को मिलकर सचित कहेंगे। केवल आहार वर्गणा सचित नहीं है, तीन ही वर्गणा सचित है, प्रत्येक शरीर वर्गणा, बादर निगोद वर्गणा और सूक्ष्म निगोद वर्गणा। ख्याल में आई ना बात, क्योंकि विग्रह गति की बात दो तीन बार आई थी। अगर
कल पढ़ा था हमने,
कल ही पढ़ा था कि परसों पढ़ा था हमने, हाँ नहीं
कल मैंने बोला भी कि इसमें
देखो देखो विग्रह गति में
हो रहा है।
देखो जहाँ प्रत्येक शरीर की बात आई थी ना, जो प्ररूपणा में आई होगी बात, जहाँ उसका यानी इवन बादर निगोद के बारे में भी आया था कि भले वो विग्रह गति में भी उनके एक बंधन बद्ध आते हैं, वो अनंत जीव, उनके बारे में भी आई थी बात। ये दोनों के लिए बात आई थी। अब जरा बाद में देखकर कल बात करेंगे, अभी तो यहाँ नहीं मिल रहे हैं, तो ये वो ढूंढने में अपना समय चला जावे। अब हम आगे बढ़ते, देखो यहाँ अपना पेज नंबर 129 पर है हम। ये कल जो सारी टोटल चर्चा हुई थी तो उसमें सिद्ध क्या हुआ कि इसलिए पहली लाइन नीचे की वर्गणाओं के संघात से प्रत्येक शरीर वर्गणा उत्पन्न नहीं होती, यानी वो मिलकर नहीं होती, बस ये बात सिद्ध किया। अब यहां से पढ़ते तीसरी लाइन से, ऊपर के द्रव्यों के भेद के बिना प्रत्येक शरीर वर्गणा उत्पन्न होती है, क्योंकि बादर निगोद वर्गणा और सूक्ष्म निगोद वर्गणा के औदारिक तेजस और कार्मण वर्गणा स्कंधों के अधस्थिति गलना के द्वारा गलित होने पर। क्या कहा? ये जो बादर निगोद वर्गणा है, सूक्ष्म निगोद वर्गणा, किसको कहा? वहां तो एक जीव है, उसके अपने 6 पुंज है और उसके शरीर के आधार से बादर निगोद जीव रहते हैं। अब इन ये पूरा पुंज है ना, इतने एक जीव के 6 पुंज और ये अनंत जीवों के भी पुंज, बादर निगोद के पूरी मिलकर एक वर्गणा कही। कौन सी? बादर निगोद वर्गणा। अब उसमें से कर्म भी खिर जा रहे हर समय और फिर औदारिक शरीर के परमाणु भी खिरते हैं, हमने क्या एक एक समय बीता है तो एक एक नीचे खिरता है उसका, इसको कहेंगे अधोस्थिति गलना। यानी तीनों शरीर के परमाणु जो स्थिति पूरी होती है तो उदय रूप होकर खिर जाते हैं, तो कहते हैं ये खिर जाते हैं। देखो सूक्ष्म निगोद, फिर से पढ़ती हूँ, ऊपर के द्रव्यों के भेद के बिना प्रत्येक शरीर वर्गणा उत्पन्न होती है, ऊपर के वर्गणाओं के भेद से भी उत्पन्न नहीं होती, ये कहना चाहते। भेद के बिना उत्पन्न होती है, उसके भेद से उत्पन्न नहीं होती, नहीं ऊपर के यानी बादर निगोद वर्गणा, सूक्ष्म निगोद वर्गणा और महास्कंद, इसके ऊपर तीन ही है। प्रत्येक शरीर वर्गणा के ऊपर ध्रुव शून्य को तो कंसिडर ही नहीं करना है, उसके ऊपर कौन कौन से? बादर निगोद वर्गणा है, सूक्ष्म निगोद वर्गणा है और महास्कंद है। आप कहेंगे सचित्त है ना, बादर निगोद वर्गणा और सूक्ष्म निगोद वर्गणा तो सचित्त है, उसमें से तो प्रत्येक शरीर वर्गणा उत्पन्न होती होगी, तो कहते ऐसा भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अधस्थिति गलना के द्वारा गलित होने पर, वो गलित हो गए तो क्या हो गए? वो तो औदारिक शरीर रूप से परिणमित हुए है, वो गलित हुए, उसमें अभी जीव तो नहीं है, समझ में आते हैं? तो प्रत्येक शरीर वर्गणा को उल्लंघन कर उनका नीचे सदृश धन रूप शांतर निरंतर आदि वर्गणा रूप से अवस्थान उपलब्ध होता है। आदि में नीचे के सब ले लेना।
नहीं, यहाँ पे ऐसे बताए सूक्ष्म निगोद और बादर निगोद, तेजस और कारमाण वर्गणा,
क्या क्या क्या
उस, ये बताया ना, बादर निगोद वर्गणा और
सूक्ष्म निगोद वर्गणा के एक शब्द है बीच में।
हाँ।
उनके औदारिक तेजस और कारमाण
अधस्थिति गलना के द्वारा गलित होने पर प्रत्येक शरीर वर्गणा को उल्लंघन कर उनका नीचे सदृश धन रूप से अंतर।
देखो देखो अभी उनके गल गए ना,
तो वो सचित सचित हो गए,
तो उससे प्रत्येक शरीर वर्गणा उत्पन्न होगी?
नहीं होगी, नहीं होगी,
ये कहना चाहिए। यानी ऊपर से छूट गए हैं तो हमने क्या देखा था, नीचे से जो एक पर प्रदेशी, दो प्रदेशी, तीन प्रदेशी, ऊपर के भेद से भी होते हैं, नीचे के संघात से भी होते हैं। तो यहाँ कहते कि ऊपर के जो अभी बादर निगोद वर्गणा है, यानी जो मूली वाली बात है या जो महामूर्ति की बात है, उसमें से कुछ शरीर का वो गल रहा है, हमेशा एक एक निशे गल रहा है, तो वो गलने से क्या प्रत्येक शरीर वर्गना उत्पन्न होगी? तो कहते नहीं होगी, नहीं होती। ये तो हाँ। तो ये क्या करते हैं, ऊपर अगर वो गल गए हैं परमाणु, कौन से शरीर से छूट गए हैं, तो जैसे अपने शरीर के अभी ये बादर निगोद वर्गना कहलाएगा कि नहीं? यहाँ हम एक जीव है, हमारे छह पुंज है और इसके आधार से रहने वाले सभी बादर निगोदों के अपने अपने पुंज है। उसमें से जो हर समय शरीर के परमाणु खिर हम कहते हैं, हर समय अनंत आते अनंत चले जाते, कर्म भी अनंत आते अनंत जाते, तो जो जाने वाले हैं वो जो छूट गए हैं, वो छूट गए हैं तो वो तो उसको तो कोई सचित नहीं, वो तो सचित नहीं कहलाएंगे वो, समझ में? तो वो क्या हो? ये प्रतिष्ठित है ना, बादर निगोद वर्गणा कहेंगे उसको, वर्गणा यानी उसमें जीव प्रत्यक्ष, हम एक मनुष्य जीव है, बादर प्रतिष्ठित कहते ना, प्रत्येक ही है मनुष्य शरीर, प्रत्येक शरीर ही है पर प्रतिष्ठित प्रत्येक है, जैसे वनस्पति में कहते हैं ना प्रतिष्ठित प्रत्येक, वहां तो अप्रतिष्ठित प्रत्येक भी है, यह मनुष्य शरीर तो प्रतिष्ठित प्रत्येक ही है, अब जो तेरहवें चौदहवें में अप्रतिष्ठित हो जाएगा। अब बात क्या हो रही थी, अब ये जो मनुष्य देह की बात करते उसमें से कारमान के परमाणु, तेजस के परमाणु और औदारिक के परमाणु छूट रहे, हर समय चाह रहे, तो छूट रहे हैं तो वो जो छूटे परमाणु जो है वर्गणा में के रूप में भी क्यों ना हो, परंतु वो प्रत्येक शरीर तो नहीं कहलाएगी, प्रत्येक शरीर वर्गणा तो नहीं कहलाएगी, तो छूटकर उसके नीचे क्या हो जाएगा, प्रत्येक शरीर के नीचे क्या है, ये तो शून्य वर्गणा थी, और उसके पहले क्या था, सांतर निरंतर थी, उसके पहले ध्रुव स्कंध था, उसके पहले अन्य अन्य वर्गणा थी, ग्राह्य और अग्राह्य, उन रूप से हो जाता है ये कहना है। सिंगल परमाणु भी हो सकता है, आदि यानी नीचे के सभी वर्गणा रूप से परिणमित हो सकता है, छोड़े हुए परमाणु, क्योंकि वो ना बादर निगोद वर्गणा कहलाएंगे जो छूट गए हो, और ना उसको हम प्रत्येक शरीर वर्गणा भी कह सकते हैं, उनसे छूटे हैं तो छूट कर वो नीचे की वर्गणा रूप से हो जाते, नीचे की यानी सांतर निरंतर के नीचे की, यानी सांतर निरंतर हो जावे या ध्रुव स्कंध हो जाए या नीचे की वर्गणा रूप से हो जावे। यहाँ तक ख्याल में आई बात?
सो बादर निकोद वर्गणा उत्पन्न होती है, जो उत्पन्न वो संघात से जब भी होती है,
वो कैसे संघात से होती है, बादर निगोद वर्गणा कैसे हुई है?
तीनों तीनों से होती है, भेद से भी होती है, संघात से
ना भी। भेद से कैसे होगी और संघात से भी कैसे होगी?
अच्छा,
अभी अभी बादर निगोद वर्गणा की बात हमने पढ़ी नहीं है, पढ़ी नहीं है, अभी प्रत्येक शरीर वर्गणा की बात चल रही है।
प्रत्येक शरीर वर्गणा जब भी उसका भेद होता है तो वो प्रत्येक शरीर रूप नहीं होता, यहाँ पे प्रत्येक शरीर वर्गणा की बात चल रही है हम लोग।
देखो, प्रत्येक शरीर वर्गणा ऊपर के वर्गणाओं के भेद से नहीं होती,
नहीं होती, हाँ बस,
नीचे के अचित्त वर्गणाओं के संघात से नहीं होती, यहाँ तक समझ में? अब स्वस्थान में बताएंगे, स्वस्थान की अपेक्षा भेद संघात से होती है, स्वस्थान की अपेक्षा क्यों? क्योंकि प्रत्येक शरीर जो पृथ्वी का एकादि है, जल का एकादि है, अग्नि का एकादि है, वो अनेक प्रत्येक शरीरों के पुंज है, वहां पर उसमें से वो भेद हो सकते हैं, वो भेद और संघात उसमें हो सकता है। देखो, ये फिर पढ़ती हूँ, ऊपर के द्रव्यों के भेद के बिना प्रत्येक शरीर वर्गणा उत्पन्न होती है, यानी ऊपर के वर्गणाओं के भेद से नहीं उत्पन्न होती है, उसका अर्थ होता है हाँ। क्योंकि बादर निगोद वर्गणा और सूक्ष्म निगोद वर्गणा के औदारिक तेजस और कार्मण वर्गणा स्कंधों के अधस्थिति गलना के द्वारा गलित होने पर, यानी औदारिक तेजस और कार्मण वर्गणा गलित हो गई, प्रत्येक शरीर वर्गणा को उल्लंघन कर उनका नीचे सदृश धन रूप शांत निरंतर आदि वर्गणा रूप से, आदि कहने से उसके नीचे के लेना, सब
संख्या था, संख्या था,
उसके ऊपर के नहीं लेना, अवस्थान उपलब्ध होता है, यानी वो सिंगल परमाणु रूप से भी हो जावे, द्विप्रदेशी, चार प्रदेशी, अनंत प्रदेशी हो जावे, या आहार वर्गणा कर्मण वर्गणा रूप भी हो जावे। शंका, यह किस प्रमाण से जाना जाता है? हाँ, पहला पैराग्राफ कहाँ पर? 128। हाँ, दूसरे। हाँ, ये फिर मैं पढ़ती हूँ। शंका और समाधान, वहाँ क्या होती बात चल रही थी। शंकाकार क्या पूछते हैं? आहार द्रव्य वर्गना, तेजस शरीर द्रव्य वर्गना, कार्बन शरीर द्रव्य वर्गना के पुद्गल स्कंधों के योग और कषाय के वश से, क्योंकि हमने देखा ना योग के कारण उसका ग्रहण होता है, प्रत्येक वर्गना रूप से बंध को प्राप्त होने पर, यानी वो बंदी तो प्रत्येक शरीर रूप से हो गई, उनसे अन्य प्रत्येक शरीर वर्गना की उत्पत्ति होती है। अतः नीचे के द्रव्यों के संघात से प्रत्येक शरीर वर्गना की उत्पत्ति क्यों नहीं कही जाती, ये उनका प्रश्न था। अभी उसका उत्तर, क्योंकि नहीं कही जाती, क्योंकि प्रत्येक शरीर वर्गना के समागम के बिना केवल नीचे की वर्गनाओं के समुदाय समागम से उत्पन्न होने वाली प्रत्येक शरीर वर्गनाएं नहीं उपलब्ध होती। इसी से सिद्ध होता है क्या कहें विग्रह। हाँ, अभी दूसरा पॉइंट, योग के वश से एक बंधन बद्ध औदारिक तेजस और कार्मन परमाणु पुद्गल स्कंद अनंतानंत विसरसोपचयन से उपचित होते हैं। उपचित होते नहीं, इकट्ठे होते, संचित होते हैं, यानी योग के कारण जो आए हैं वो इकट्ठे बनते हैं ना जीव के, क्योंकि जीव के साथ वो बनते बंध को प्राप्त होते, इकट्ठे हो जाते, यानी औदारिक का औदारिक के साथ, औदारिक का तेजस के साथ, औदारिक का कारमान के साथ वो आपस में भी बंध होता है। ये हमने कर्मकांड में भी देखा था, ये अभी अभी लास्ट पुस्तक में भी देखा था। तेजस का तेजस के साथ भी होता है, तेजस का कारमान के साथ भी होता है, तेजस का औदारिक के साथ भी होता है, ऐसे हर एक का आपस में तीनों का एक बंधन बद्ध हो जाते हैं। न देखो क्या कहते, उसने ग्रहण किए, वहां जीव ऑलरेडी था ना, जीव ने ग्रहण किए तो जीव के साथ ऑलरेडी प्रत्येक शरीर वर्गना उसको कहते थे हम, और उसने और भी ग्रहण किए, ग्रहण करके उसके साथ जुड़ने पर उसको प्रत्येक शरीर वर्गना कहेंगे, यानी वो प्रत्येक शरीर वर्गना के साथ वो नीचे के आकर जुड़े है। यहाँ क्या कहते हैं, वो नीचे की वर्गना जो आहार वर्गना है, तेजस वर्गना, कारमान वर्गना पड़ी है, वो आपस में जुड़ जावे और उसको प्रत्येक शरीर वर्गना कहे, ये हो सकता है?
नहीं
क्योंकि वहाँ जीव ही नहीं है। योग के वश, योग किसका है? जीव का ही तो है ना, तो जीव ने उनको ग्रहण किया तो जीव के साथ ऑलरेडी कारमान तेजस तो थे ही थे। हम पहले समय की बात करते, विग्रह गति से आया है तो केवल कारमान तेजस और उसके दो पुंज यानी चार पुंज थे, तो जीव ने योग के वश उसको ग्रहण किया, आहारक तेजस कारमान को,
तभी वो प्रत्येक,
तो वो ऑलरेडी उसके साथ प्रत्येक शरीर वर्गना के साथ जुड़ा है, वो आपस में जुड़कर प्रत्येक शरीर वर्गना नहीं हुई है, ये कहना चाहते, क्योंकि योग के वश से जीव है तभी तो उसका योग होगा। बिल्कुल पहले ही समय से,
तो इसलिए सकते ना क्योंकि योग और कषाय के वश से प्रत्येक शरीर वर्गना उत्पन्न होती है, ऐसे ले सकते हैं? उल्टा
नहीं, उल्टा मत सोचो, क्योंकि प्रत्येक शरीर वर्गना ऑलरेडी थी कि नहीं उसके साथ, योग के कारण नए आके उसमें जुड़ते, बस इतना ले लो, क्योंकि अपने ओर से कुछ आप उसका नया डेफिनेशन बनाते जाते हैं तो उसमें कोई गलती होती है। योग के कारण उसका ग्रहण होता है ना, कर्म नो कर्म का ग्रहण होता है, ग्रहण होता है ना, और पुराने के साथ वो जुड़ भी जाते हैं, दोनों को ले लो। यानी वही से पहले के पहले समय में भी वो प्रत्येक शरीर वर्गना के साथ जुड़ गए, अब जो निगोद के सहित वाले जीव है उसके साथ वो जुड़ गए। अभी हम यहाँ पढ़ रहे थे 129 पेज पर। शंका, यानी ये जो ऊपर के बादर निगोद वर्गणा है, सूक्ष्म निगोद वर्गणा है, वहां जो औदारिक तेजस कारमान के परमाणु छूट जाते हैं या उनकी वर्गणा ही छूट जाती है, वो प्रत्येक शरीर वर्गणा रूप नहीं होती है, उसका उल्लंघन कर उसके जो नीचे की वर्गणाएं हमने देखी, शांत निरंतर आदि, आदि में नीचे की ओर आदि लगाना,
ये सभी पांचों वर्गणा सभी वर्गणा रूप,
सभी ग्राह्य अग्राह्य वो सब नीचे के परमाणु तक की सभी वर्गणा रूप से परिणमित हो जाते हैं। अब यह किस प्रमाण से जाना जाता है? समाधान, स्वस्थान की अपेक्षा भेद संघात से ही लगाया प्रत्येक शरीर वर्गणा होती है, यह सूत्र अन्यथा बन नहीं सकता, इससे जाना जाता है। फिर शंका, भेद को प्राप्त होने के दूसरे समय में प्रत्येक शरीर वर्गणा रूप से उनका परिणमन होता है, इसलिए उपरिम द्रव्यों के भेद से प्रत्येक शरीर वर्गणा की काने की उत्पत्ति क्यों नहीं कहते हैं? समाधान, नहीं, क्योंकि उपरिम वर्गणा से आए हुए परमाणु पुद्गलों से ही प्रत्येक शरीर वर्गणा की निष्पत्ति का अभाव है। समझ में आती है बात? प्रत्येक शरीर वर्गणा में से प्रत्येक शरीर वर्गणा छूटी पड़ सकती है, परंतु बादर निगोद वर्गणा में से परमाणु छूट कर वो प्रत्येक शरीर वर्गणा बनती है, ऐसा नहीं बात?
ऐसा नहीं होता।
हाँ, उसका परिणमन नीचे की वर्गणा रूप से हो जाता है।
और इसे यहाँ पे ऐसे बता रहे कि नीचे की ओर होके दूसरे समय में वो प्रत्येक शरीर रूप हो सकते हैं।
प्रत्येक शरीर रूप कब हो गए?
जब ही छूटे तभी प्रत्येक शरीर रूप नहीं हुए,
ये शंका पूछ रहा है।
अच्छा, ये शंका है,
ख्याल में ना, उसका उत्तर सोचो। समाधान जो आचार्यों का वर्णन करे उसको देखो, कहते उपरिम वर्गणा से आए हुए परमाणु पुद्गलों से ही प्रत्येक शरीर वर्गणा की निष्पत्ति का अभाव है, यानी उसके बिल्कुल प्रत्येक शरीर वर्गणा नहीं बनती है, क्योंकि आप कहेंगे वो प्रत्येक शरीर वाले ने वो फिर आहार वर्गणा रूप हुए फिर उसको ग्रहण किया, हाँ, क्योंकि वो बादर निगोद वर्गणा से छूटे, मान लेते आहार वर्गणा तेजस वर्गणा कारमान वर्गणा हुई और फिर बाद में प्रत्येक शरीर वर्गणा वाले ने उसको ग्रहण किया, तो वे प्रत्येक शरीर वर्गणा के साथ जुड़कर प्रत्येक शरीर वर्गणा हुई, डायरेक्ट प्रत्येक शरीर वर्गणा रूप नहीं हुई, ये कहना चाहते है ना? आगे बढ़े
सर, यहाँ पे जो निगोद अनंत जीव है,
हाँ,
उनके प्रत्येक शरीर वर्गणा का विघटन हो गया,
उनके प्रत्येक शरीर वर्गणा है ही नहीं, निगोदों के कहा है कि प्रत्येक शरीर वर्गणा।
अच्छा अच्छा, वहाँ पे
अभी फिर शंका नीचे के, बांदर निगोद वर्गणा से और सूक्ष्म निगोद वर्गणा से एक जीव के प्रत्येक शरीर वालों में उत्पन्न होने पर ऊपर के द्रव्यों के भेद से प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गणा की उत्पत्ति क्यों नहीं कहती? अभी इनका प्रश्न क्या है? वो बादर निगोद रूप से था ना, उसमें से पूरा जीव एक निकला, यानी निगोद वाला जीव निकला, उसमें से एक निगोद जीव निकला और वो पृथ्वी का एक में जन्म लिया। वो जीव की बात कर रहे अभी, जीव निकला, बादर निगोद निकला तो उसकी निगोद पर्याय छूट गई और वो विग्रह गति में आया है, और बाद में उसने औदारिक शरीर के परमाणु वगैरह ग्रहण करके पृथ्वी का एक हुआ। ये उनका प्रश्न का मुझे लगता है वो इस तरह उसका ये है, क्या कहते हैं कि बादर निगोद वर्गणा से और सूक्ष्म वर्ग निगोद वर्गणा से एक जीव के, वो जीव आया वहां से, परमाणु छूटे वो तो प्रत्येक शरीर रूप से होते ही नहीं है। अभी शंका क्या है? वो जीव आया है तो वो प्रत्येक शरीर वालों में उत्पन्न होने पर ऊपर के द्रव्यों के भेद से प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गणा की उत्पत्ति क्यों नहीं कहते? ये समझ में आवे ऐसा है ना? पहले वो एक जीव था और उसके आधार से बादर निगोद थे और सबके छो पुंजों का मिलकर बादर निगोद वर्गणा कही जाती थी। अब एक बादर निगोद जीव उसमें से छूट गया है और वो अन्य पर्याय में उत्पन्न हुआ, हम मानते हैं ना पृथ्वी का एक में उत्पन्न हुआ, तभी तो अभी वो प्रत्येक शरीर वर्गणा कहलाएगी उसकी, तो उससे वो हुई ऐसा क्यों नहीं कहते? उनका प्रश्न है। अब उसका समाधान, नहीं, क्योंकि ऊपर की वर्गणाओं के भेद का नाम ही विनाश है, और बादर निगोद वर्गणा तथा सूक्ष्म निगोद वर्गणा में से एक वर्गणा नष्ट होती हुई प्रत्येक शरीर वर्गणा रूप से नहीं परिणमती, क्योंकि ऐसा होने पर प्रत्येक शरीर वर्गणा अनंत हो जाएगी। क्या कहना चाहते हैं? वहां एक समय में अनंत जीव मरते हैं, और अगर हम उसको प्रत्येक शरीर वर्गणा कहेंगे तो प्रत्येक शरीर वर्गणाएं अनंत हो जाएगी। पर प्रत्येक शरीर वर्गणाएं कितनी होती है?
असंख्यात। असंख्यात ही होगी,
असंख्यात लोक होगी ना, हमने देखी ना।
असंख्यात तो ये पांचों
देखो देखो हमने एक एक श्रेणी की बात देखी थी। ये पेज नंबर 118 पर है। नहीं, 18 पर तो श्रेणी की बात है। 118 में लास्ट लाइन है, लास्ट लाइन। वर्तमान काल में अजगण्य अनुत्कृष्ट प्रत्येक शरीर वर्गणाएं असंख्यात लोक प्रमाण होती है ना। और अगर हम बादर निगोद से प्रत्येक शरीर वर्गणाएं उत्पन्न होती है, क्योंकि वो निगोद जीव एक, क्योंकि एक जीव मरा तो अनंत जीव उसके साथ मरते ना, क्योंकि एक साथ अनंत मरते हैं, तो अनंत प्रत्येक शरीर वर्गणाएं कहनी पड़ेगी।
नहीं, पर अनंत मर के वापस प्रत्येक शरीर वाले में नहीं उत्पन्न होते,
यथा योग्य तो होगे कि नहीं,
क्योंकि प्रत्येक शरीर जीवी खाली
ऑलरेडी प्रत्येक शरीर वाले है, और उसमें से इतने मरे तो भी तो हो गए ना, बाद में फिर निगोद वर्गणा में चले गए, ऐसा उनका कहना है। देखो पहले सुन, क्योंकि वो प्रत्येक शरीर वर्गणा अनंत हो जाएगी यदि कहा जाए, क्योंकि वो यदि कहा जाए ना, शंकाकार की शंका स्वयं आचार्य बोल के दिखाते थे। यदि कहा जाए कि असंख्यात लोक प्रमाण जीवों के द्वारा एक बादर निगोद वर्गणा या सूक्ष्म निगोद वर्गणा उत्पन्न होती है, सो यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि इस प्रकार उन वर्गणाओं के अनंत होने का प्रसंग आता है। यानी ना प्रत्येक शरीर वर्गणा मिलकर बादर निगोद वर्गणा होती है, ना बादर वर्गणा में से एक जीव छूटकर प्रत्येक शरीर वर्गणा कहते, ये उनका कहना है। तथा अलग हुए एक जीव के, एक जीव जो अलग हुआ है बादर निगोद वर्गणा के और सूक्ष्म निगोद वर्गणा के अनंत विभाग प्रमाण द्रव्य का उस रूप से भेद भी संभव, भेद भी नहीं बन सकता। देखो एक निगोद है ना, तो बादर निगोद वर्गणा में निगोद जीव कितने थे?
अनंत।
तो उसमें से एक जीव निकला तो कितना निकला? वो वर्गणा का अनंत वा भाग निकला,
वो प्रत्येक शरीर रूप नहीं हो,
तो उस रूप से भेद भी नहीं बन सकता। यदि कहा जाए कि महास्कंद वर्गणा नष्ट होती हुई, क्योंकि बादर निगोद वर्गणा से नहीं बनते हैं, सूक्ष्म निगोद वर्गणा से नहीं बनते, तो महास्कंद में से तो उसका भेद होकर प्रत्येक शरीर वर्गणा होगी कि नहीं होगी, ये प्रश्न है। तो कहते हैं महास्कंद वर्गणा नष्ट होती हुई प्रत्येक शरीर वर्गणा रूप से परिणमन करती है, सो यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि एक तो उसका सर्वकाल विनाश नहीं होता, यानी महास्कंद हमेशा ही बना रहता है। दूसरे, ऐसा मानने पर प्रत्येक शरीर वर्गणा के अनंत होने का प्रसंग आता है, क्योंकि अगर उसके भेद से हो गए तो अनंत उसके प्रत्येक शरीर हो जाएंगे। और तीसरे, अचेतन का सचेतन रूप से परिणमन होने में विरोध है, यानी वो अचेतन वर्गणा जो केवल पुद्गल परमाणुओं के पिंड से जीव नहीं उत्पन्न हो रहा है, वहां अचेतन के संयोग से शरीर जीव नहीं उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि प्रत्येक शरीर वर्गणा वो सचित्त वर्गणा है, वहां जीव है और उसके संयोग में परमाणु है, और ऑलरेडी वो जीवों के साथ परमाणु है, और नए परमाणु आकर उसके जुड़ते तब उसको प्रत्येक शरीर वर्गणा कहते, केवल अचित्त अचित्त के संयोग से नहीं हो जाता है। जैसे ये सब अभी साइंस में ये चल रहा ना, तो एक सेल का दो सेल हुए, अमुक हुए, तमुक हुए और जीव तैयार हुआ, यानी उनका मानना ही है कि परमाणु से ही जीव होता है। अब यहाँ क्या सिद्ध हो रहा है? इसलिए प्रत्येक शरीर वर्गणा उपरिम वर्गणाओं के भेद या संघात से नहीं उत्पन्न होती, यह सिद्ध हुआ। समझ में नहीं आता, किंतु स्वस्थान की अपेक्षा भेद संघात से उत्पन्न होती है, क्योंकि प्रत्येक वर्गणा के अवांतर भेद रूप वर्गणाओं के समुदाय समागम या असमागम से वर्गणा की उत्पत्ति देखी जाती है। अवांतर भेद ने प्रत्यक्ष वर्गणा के अवांतर भेद लिए ना, अवांतर ने अनेक अलग अलग भेद हमने देखे थे, उसके संयोग से हो सकता है। अब आगे
ये थोड़ा ट्रिकी है, ये पहली बार ये समझ में आया, क्योंकि ये लास्ट टाइम हम लोग को ये क्वेश्चन क्यों नहीं आया था।
अरे इतने 10-12 साल के बाद इतनी सभी वहाँ सूक्ष्म बातें हमने देखी थी, वो याद थोड़ी रहने वाली है, निकल जाती, फिर लगता है अरे हमें नए से पढ़ रहे हैं।
हाँ ऐसे ही मेरे को लगता
है क्योंकि स्मरण में से चले जाते हैं ना। देखो अभी बाकी बात छोड़ो, कोई आपने 10-12 साल पहले कोई पिक्चर देखी होगी और मान लेते टीवी पर चल रहा है शो, तो उसका एक एक प्रसंग आपको याद नहीं है। कोई ऐसा होता नहीं, अरे मुझे याद नहीं है ये दृश्य मुझे याद नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं हो सकता, वो बातें भूल जाते हैं ना, क्योंकि सभी बातें भले आवाज तक पहुंचे तो धारणा तक पहुंचे थोड़ी है, तो हमें ऐसा लगता है हमने पढ़ी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। और दोबारा पढ़ने पर उसके और थोड़े डिटेल्स ख्याल में आते, ये भी हो सकता है, दोनों ही ओर से हो सकता है। 111 का सूत्र, पत्ते शरीर वगणाए उवरी मादर निगोद दव्य वगणा नाम, वो रह गया ना, दव्यगणा हुआ है। दव्य वगणा चाहिए, कहाँ आगे नेक्स्ट 113 में भी दव्य वगणा चाहिए, ऊपर देखो ना। आपके नए प्रिंट है उसमें ठीक कराया हुआ का, देखो पत्ते ये शरीर वगणाए उवरी बादर निगोद दव्य वगणा नाम किम भेदेन किम संघादेन किम भेद संघादेन। प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गणा के ऊपर बादर निगोद वर्गणा क्या भेद से होती है, क्या संघात से होती है, या क्या भेद संघात से होती है, यह सूत्र सुगम है।
तो मेरा एक क्वेश्चन है, जो प्रत्येक शरीर वर्गा है तीनों काल, उसका प्रमाण समान ही रहेगा क्या अलग होगा?
असंख्यात लोग इतना प्रमाण रहेगा,
असंख्यात लोग प्रमाण ही प्रत्येक शरीर वर्गणा एक समय में होगा,
क्योंकि प्रत्येक शरीर ही जीव कितने हैं,
असंख्यात लोग प्रमाण,
कौन कौन आए उसमें,
ये पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, और देव और नार की, और 13वें 14वें गुण
आहार शरीर वाले, वो सब
आहार शरीर वाले,
ये सब मिलकर कितने हो गए, असंख्यात लोग ही हो गए, क्योंकि चार कायिक ही असंख्यात लोग है, आपने देखे हो, तो सब मिलकर भी असंख्यात लोग ही कहलाएंगे।
तो उसमें वेरिएशन हो सकता है, पर वो
होगा ना, हमेशा शास्त्र में जो संख्या बताई जाती है वो मैक्सिमम पॉसिबल होती है, अब उसमें थोड़ी ही नारी 2-4-5 इधर उधर तो हो ही हो जाएंगे। परंतु है तो वो सारी निरंतर मार्गणा है,
हाँ, निरंतर
तो उसमें तो जीव हमेशा होगी, ऐसा नहीं कि मनुष्य जो उपलब्धि पर्याप्त है उसकी भी संख्या कितनी है तो असंख्यात है, पर वो असंख्यात मैक्सिमम पॉसिबल है, ऐसा भी हो सकता है एक भी जीव ना हो, ऐसा तो इसमें नहीं, तो असंख्यात लोग ये कथन लागू होगा उसमें। अभी आगे बढ़े 111 का नीचे अर्थ हिंदी में, प्रत्येक शरीर वर्गणा के ऊपर बादर निगोद वर्गणा क्या भेद से होती है, क्या संघात से होती है, या क्या भेद संघात से होती है, यह सूत्र सुगम है। उसका उत्तर देते हैं, सत्थानेन भेद संघा देना, स्वस्थान की अपेक्षा भेद संघात से होती है, यानी यहाँ पर जैसे प्रत्येक शरीर वर्गणा ना ऊपर के भेद से होती है ना नीचे के संघात से होती है, स्वस्थान भेद संघात से होती है, ऐसे यहाँ पर भी है, नीचे की वर्गणाओं के संघात से तो बादर निगोद वर्गणा उत्पन्न होती नहीं, क्योंकि अचेतन वर्गणाओं के समुदाय समागम से सचेतन वर्गणाओं की उत्पत्ति होने में विरोध है, यानी वो नीचे की अचेतन वर्गणाओं का तो कोई सवाल नहीं है। तथा असंख्यात लोक प्रमाण प्रत्येक शरीर वर्गणाओं के समुदाय समागम से अनंत जीव गर्भ एक बादर निगोद वर्गणा की उत्पत्ति होने में विरोध है। तो कहते अनेक प्रत्येक शरीर वर्गणाएं मिलकर ये होता होगा, तो कहते ऐसा भी नहीं है, क्योंकि वहाँ असंख्यात लोक प्रमाण जीव है और यहाँ बादर निगोद वर्गणा में तो अनंत जीव है। एक निगोद शरीर में अनंत है तो पूरे वर्गणा में कितने अनंत होंगे। यह कहना उपरिम सचित्त वर्गणा के भेद से यह वर्गणा होती है ठीक नहीं है, क्योंकि यानी ऊपर की सचित्त कौन है, सूक्ष्म बादर निगोद वर्गणा, तो सूक्ष्म बादर निगोद वर्गणा में से बादर सूक्ष्म निगोद वर्गणा से बादर निगोद वर्गणा होती है ये कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि एक सूक्ष्म निगोद वर्गणा के सब जीवों का युगपत बादर निगोद वर्गणा रूप से परिणमन होने में विरोध है। तथा जो जीव सूक्ष्म निगोदों में से आकर बादर निगोदों में उत्पन्न होते हैं उनके द्वारा आरंभ की गई बादर निगोद वर्गणा का अभाव है। तो शंकाकार पूछते यह किस प्रमाण से जाना जाता है, तो कहते उपरिम वर्गणाओं के भेद से नहीं होती इस वचन से जाना जाता है। महास्कंद द्रव्य वर्गणा के भेद से बादर निगोद वर्गणा नहीं उत्पन्न होती, क्योंकि एक तो उसका विनाश नहीं होता, दूसरे अचित्त का सचित्त रूप से परिणमन होने में विरोध है। जैसे हमने प्रत्येक शरीर के बारे में देखा था वैसे यहाँ पर भी, इसलिए स्वस्थान की अपेक्षा भेद संघात से ही बादर निगोद वर्गणा होती है। सूक्ष्म निगोद में से या प्रत्येक शरीर में से आए हुए जीवों के द्वारा और बादर निगोद जीवों के द्वारा एक एक बादर निगोद वर्गणा निष्पन्न की जाती है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। हाँ, उसके पूरी बादर निगोद वर्गणा उससे हो जावे ये बात नहीं है, सारे के सारे सूक्ष्म जीव आवे और एक बादर निगोद वर्गणा बन जावे ये नहीं हो सकता, ये कहना चाहते हैं। फिर शंका, यत बादर निगोदों से सूक्ष्म निगोद असंख्यात लोक गुणे हैं, क्योंकि बादर से सूक्ष्मों का प्रमाण, एक केंद्रियों में बादर जीवों के प्रमाण से सूक्ष्म जीवों का प्रमाण असंख्यात गुणा है, अतः एक बादर निगोद वर्गणा शुद्ध सूक्ष्म निगोदों से आरंभ होती है। यदि ऐसा कहा जाए तो क्या दोष है, क्या कहते हैं, ये सूक्ष्म इतने हैं अधिक प्रमाण में उसमें एक बादर निगोद होने दो ना, शुद्ध सूक्ष्म निगोदों से मात्र सारे सूक्ष्म ही जीव इसमें आ गए, ऐसा क्यों नहीं कहते। समाधान, नहीं, क्योंकि एक सूक्ष्म निगोद वर्गणा में स्थित जीवों के अनंतवे भाग मात्र जीवों का ही बादर निगोदों में संचार देखा जाता है, यानी मोस्टली सूक्ष्म में से सूक्ष्म में जाने वाले ज्यादा हो गए, सूक्ष्म में से बादर निगोद में आने वाले अनंत विभाग हो सकते हैं। एक निगोद एक वर्गणा की बात चल रही, जैसे अनंत जीव बादर में और सूक्ष्म में जन्म मरण करते हैं, पर क्या कहते हैं एक सूक्ष्म निगोद वर्गणा का अर्थ क्या है, वो एक बंधन में बद्ध जीव, एक जो उनका पूर्वियों का समूह होगा उसमें से अनंत विभाग मात्र जीवों का बादर निगोद होते हैं, अतः एक सूक्ष्म निगोद वर्गणा से एक बादर निगोद वर्गणा का आरंभ नहीं हो सकता, ये उनका कहना है। यानी वो सूक्ष्म निगोद वर्गणा यानी अनेक जो बंच होगा सूक्ष्म निगोद जीवों के शरीरों का, भले वो जलसल आकार कहीं पर भी है, उसमें से एक टुकड़ा निकल गया और सारे के सारे बादर निगोद रूप से हो गए, तो ऐसा नहीं है ये कहना चाहते।
पर सूक्ष्म निगोद का शरीर जो है उसमें तो हमने सूक्ष्म निगोद वर्गणा है, उसमें अनेक स्कंद रूप एक वर्गणा हो सकती है,
अनेक
स्कंद रूप वहाँ पे जो अंडर आवास सब है वो एक
अनेक स्कंद तो पूरे लोक में पड़े हैं, हमने एक वर्गणा किसको कहेंगे, एक बंधन में बद्ध जीवों का समूह, जीवों का नहीं शरीरों का समूह, एक वंश उनका, ऐसे सब वंश तो अनंत पड़े हो, उसके असंख्यात लोक प्रमाण वंश पड़े, उसकी बात नहीं यहाँ पर, एक वंश में एक बंधन बद्ध जो है, एक दूसरे से बंधे हुए की बात है।
तो यह पुल भी ले सकते हैं ना, एक बंधन बद्ध में
पुल भी होगी ना उसकी,
एक पुल भी में जो बंधन बद्ध है, और ऐसे
अभी उसमें पुल भी अनेक हो सकती है, अभी उसको हम अपनी ओर से उसको नाम मत दो, एक बंधन बद्ध जो कह दिया, जैसे हमने कहा ना वो अंगूर का जो बड़ा घोंसला लाया, तो उसमें क्या है, एक एक डंडी पर इतने इतने हैं सारे मिलकर, और ऐसे हमने अनेक बंच बॉक्स में रख दिए, अभी जो कुछ है उसका अभी हम उसको इमेजिन नहीं कर सकते, एक बंधन बद्ध ये उसकी क्राइटेरिया है, एक बंधन में बंधे हुए वो सारे एक दूसरे के जुड़े हुए होने चाहिए, एक बंधन बद्ध का अर्थ होते उसके शरीर एक दूसरे के सारे जुड़ गए हैं ना। यानी इतना ही कहना है कि सूक्ष्म निगोद वर्गणा से उसके भेद से मादर निगोद वर्गणा उत्पन्न नहीं होती, ये तो सर्वाड़ो। अब सूक्ष्म निगोद वर्गणा काहे से उत्पन्न होती उसकी बात करेंगे। बादर निगोद दव्व वगणानम वरी, वो वर रह गया, लास्ट टाइम डाला था क्या पुरानी पुस्तक में, सुहुम निगोद दव्व वगणानाम किम भेदेन किम संघादेन किम भेद संघादेन, बादर निगोद द्रव्यणा वर्गणाओं के ऊपर सूक्ष्म निगोद द्रव्य वर्गणा क्या भेद से होती है, क्या संघात से होती है, या क्या भेद संघात से होती है, यह सूत्र सुगम है। अब इसके ऊपर तो एक महास्कंद वर्गणा ही है, कहते सत्थानेन भेद संघादेन, स्वस्थान की अपेक्षा भेद संघात से होती है, बादर निगोद वर्गणाओं के संघात से एक सूक्ष्म निगोद वर्गणा नहीं होती, वो जुड़कर एक हो जावे ये सब ये नहीं, क्योंकि एक सूक्ष्म निगोद वर्गणा में जितने जीव है उतने बादर निगोद जीवों के द्वारा आरंभ की गई सूक्ष्म निगोद वर्गणा का अभाव है। शंकाकार, यह किस प्रमाण से जाना जाता है? समाधान, नीचे की वर्गणाओं के संघात से नहीं होती इस वचन से जाना जाता है। यह सूत्र इटसेल्फ उसका प्रूफ है, अथवा बादर निगोदों का सूक्ष्म निगोद रूप से होने में विरोध है, इसलिए बादर निगोद सूक्ष्म निगोद वर्गणा का आरंभ नहीं करते, जबकि सूक्ष्म बादर नहीं है और बादर सूक्ष्म नहीं है, क्योंकि बादर नहीं होते हुए उसको सूक्ष्म नहीं कहेंगे, वो बादर निगोद वर्गणा में से कोई छूट गया एक बंच, और वही सूक्ष्म निगोद कहलाएगा, वो बादर है वो सूक्ष्म कैसे कहलाएगा, मरकर जब सूक्ष्म जाए वो बात अलग है, इसलिए क्या कहते हैं सूक्ष्म बादर नहीं है और बादर सूक्ष्म नहीं है, इसलिए सूक्ष्म निगोदों के द्वारा ही सूक्ष्म निगोद द्रव्य वर्गणा आरंभ की जाती है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। बादर निगोद और प्रत्येक शरीर जीवों के मरकर सूक्ष्म निगोदों में उत्पन्न होने पर उनका बादर निगोदपन और प्रत्येक शरीरपन नहीं रहता, क्या कहते हैं, जब तक वो बादर निगोद पर्याय में थे तब तक उसको बादर निगोद कहा, मरकर अन्यत्र गए तब उसको बादर निगोद नहीं कहेंगे, तो बादर निगोद के जुड़कर वो निगोद सूक्ष्म तैयार हुए ऐसा नहीं कह सकते हम, क्योंकि विरुद्ध परिणामों की युगपत वृत्ति होने में विरोध है। यानी बादर निगोद भी हो वही उसी समय उसको सूक्ष्म निगोद कह तो नहीं बन सकते, मरकर वहां उत्पन्न होते उसकी पर्याय बदल गई, यहां यह अर्थ प्रधान है, इसे प्रत्येक शरीर वर्गणा और बादर निगोद वर्गणा में भी कहना चाहिए, यानी यही कथन वहां पर भी लागू होता है। इसके ऊपर की वर्गणा कौन सी है तो महास्कंद, क्योंकि बीच में एक शून्य वर्गणा है पर उसकी तो बात ही नहीं लेनी। महास्कंद के भेद से भी सूक्ष्म निगोद वर्गणा नहीं होती क्योंकि पूर्वोक्त, वो पुदीर्घ चाहिए, पूर्वोक्त दोषों का प्रसंग आता है, किंतु भेद संघात से होती है। सूक्ष्म निगोद के अवांतर भेद रूप वर्गणाओं के भेद संघात से सूक्ष्म निगोद वर्गणा उत्पन्न होती है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। यानी जो उसके जो कुछ एक बंधन बद्ध है उसमें से छूटकर और फिर इकट्ठे होकर उनके भेद से और संघात से हो सकते हैं। शंका, एक सूक्ष्म निगोद वर्गणा में एक विसर्गोपचय परमाणु के बढ़ने पर अन्य वर्गणा होती है क्योंकि वहां एक परमाणु अधिक देखा जाता है। ऐसा नहीं मानने पर पहले कहे गए स्थानों का अभाव होता है। ये क्या, अभी उसकी शंका आने वाली है, क्या कहना चाहते हैं? हमने देखा था ना, कोई भी वर्गणा के जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक हमने एक एक परमाणु के बढ़ते हुए सारे विकल्प देखते, विश्वसोपचय को बढ़ाओ, फिर औदारिक शरीर को बढ़ाओ, फिर सब बढ़ाओ, छह पुंज, फिर एक जीव बढ़ाओ, इस तरह से हमने देखे थे। परंतु ऐसा है नहीं, इसलिए नीचे की स्थिति वाले द्रव्यों के समुदाय समागम से सूक्ष्म निगोद वर्गणा होनी चाहिए। क्या कहना चाहते? ये कहते हैं कि एक एक परमाणु से बढ़ते हुए वर्गणा के भेद हमने देखे, तो एक परमाणु जुड़ा ना तो नीचे की वर्गणा हुई कि नहीं हुई, ये कहना चाहते। कभी कभी कोई जीव ऐसा लेके अनंत उसके विश्वसोपचय एक्स्ट्रा है उसके साथ, तो उसमें वो परमाणु अधिक बढ़े कि नहीं, तो परमाणु बढ़े यानी उसके तो नीचे की वर्गणा से बढ़े कि नहीं बढ़े, ये उनका प्रश्न है। समाधान, इस शंका का समाधान करते हैं, पर्यायार्थिक नय का यदि अवलंबन किया जाए तो यह कहना युक्त है, फिर भी स्थान प्ररूपणा में कोई दोष नहीं है क्योंकि वहां पर्यायार्थिक नय का अवलंबन लिया गया है। क्या कहते हैं? जो कोई ऐसा जीव है उसने एक परमाणु उसके साथ एक्स्ट्रा था, फिर एक से एक्स्ट्रा था, इस तरह से स्थान की प्ररूपणा की थी एक एक परमाणु से बढ़ते हुए, तो ये प्रश्न पूछ रहे हैं वहां परमाणु बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तो परमाणु तो नीचे की वर्गणा हुई कि नहीं हुई, ये उनका कहना है। परंतु यहाँ पर द्रव्यार्थिक नय का अवलंबन लिया गया है, द्रव्यार्थिक नय का वो परमाणु बढ़ता है कि नहीं उसकी चर्चा नहीं, यहाँ नीचे की वर्गणा से ऊपर की वर्गणा डायरेक्ट होती है कि नहीं, ये प्रश्न चल रहा था। तो द्रव्यार्थिक नय का अवलंबन लिया गया, इसलिए परमाणु की वृद्धि और हानि से वर्गणा में अन्यपना नहीं आता, किंतु जीवों के समागम और भेद से सचित्त वर्गणा की उत्पत्ति होती, ये मूल कहना है। परमाणु लेता है नहीं लेता, पर वो परमाणु लेने वाला वहां जीव विद्यमान है ना, समझ में है ना, केवल परमाणु 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 के समागम से ये उत्वर्गणाएं हुई नहीं है, इतना ही कहना है। जो पहले कहा है वही यहां पर कहना है। इसलिए नीचे के द्रव्यों के समागम से सचित्त वर्गणाएं नहीं उत्पन्न होती, यह उक्त कथन का तात्पर्य। तीनों ही सचित्त वर्गणा के बारे में यही कथन लागू होता है।
सचित्त वर्गणा खाली स्वस्थान संघात और भेद,
स्वस्थान भेद और संघात से ही होती, ही लगा ले। अब आगे 115, सुहम निगोद वग्गणानम उवरी महाखंड दव वग्गणानाम किम भेदेन किम संघादेन किम भेद संघादेन। अभी उसके ऊपर कोई है ही नहीं भेद करने के लिए, है ना। सूक्ष्म निगोद वर्गणाओं के ऊपर महास्कंद द्रव्य वर्गणा क्या भेद से होती है, क्या संघात से होती है, या क्या भेद संघात से होती है, यह सूत्र सुगम है। सत्थानेन भेद संघादेन, स्वस्थान की अपेक्षा भेद संघात से होती है। नीचे की वर्गणाओं के संघात से दूसरी महास्कंद वर्गणा नहीं उत्पन्न होती। क्या कहते हैं? महास्कंद वर्गणा एक ही होती इस विश्व में, तो कहते वो है ऑलरेडी, और अन्य फिर वर्गणाएं नीचे की वर्गणाएं मिलकर एक महास्कंद बन जाए तो कहते दूसरी महास्कंद वर्गणा होती ही नहीं है, एक ही रहती है हमेशा, क्योंकि वह सर्वत्र एक वर्गणा रूप है। इसका अर्थ समझ में आई बात? एक आदि परमाणु पुद्गलों के बढ़ने पर अन्य वर्गणा होती है, यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि एक वर्गणा को छोड़कर वहां दूसरी वर्गणा नहीं पाई जाती। क्या कहते हैं? ये जो जघन्य जो प्रमाण है महास्कंद की वर्गणा का, उसमें एक परमाणु बढ़ा, दूसरे परमाणु बढ़ा, तो उससे तो उसकी उत्पन्न हुई ना। हाँ, पर वो तो एक ही होगा ना, बढ़कर एक ही बनी, पहले भी होगी और फिर दूसरी भी वहां उपलब्ध है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एक वर्गणा को छोड़कर वहां दूसरी वर्गणा नहीं पाई जाती, ये कहना है। किंतु वह भेद संघात से होती है, क्योंकि यहाँ पर पर्यायार्थिक न का अवलंबन लिया गया है। अब उसको समझाते हैं। यथा महास्कंद से एक आदि अनंत परमाणु पुद्गलों के विलग होकर चले जाने पर भेद से यह महास्कंद द्रव्य वर्गणा होती है। क्या कहा? वो महास्कंद में से कुछ परमाणु छूटकर उसका अन्य द्रव अन्य परिणमन हो गया,
तो वो
छूटकर वो जो रहा वो महास्कंद रूप से ही रहा, तो उसके भेद से उत्पन्न हुई कहेंगे। यानी महास्कंद में से कुछ निकल गए है तो भेद से हुए, स्वस्थान में भेद से। उसी में एक आदि अनंत परमाणु पुद्गलों के आ जाने पर संघात से अन्य महास्कंद वर्गणा होती है। यानी वो जो नई जो बनी पुरानी में जुड़ गए तो अभी उसी को नया कहलाएगा। ऐसा नहीं कि अनेक 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 अलग अलग महास्कंद हो रहे, ऐसी बात नहीं है। एक ही महास्कंद, उसमें परमाणु आते भी है और कभी निकल जाते, कम भी होते, हीनाधिक होते ना, जगन्य से उत्कृष्ट तक भेद, परंतु हमेशा रहेगी तो एक ही है। तथा एक साथ उपचय और अपचय होने से, क्योंकि कितने परमाणु आकर मिलते हैं, उपचय संचय, उपचय ने आकर मिलना और अपचय ने उसमें से निकल जाना, छूट जाना, भेद संघात से महास्कंद द्रव्य वर्गणा होती है। इस प्रकार सर्वत्र तीन प्रकार से भेद संघात की अर्थ प्ररूपणा करनी चाहिए। उपरिम वर्गणाओं के भेद से नीचे अपूर्व वर्गणा की उत्पत्ति भेद जनित कही जाती है। ये तो अभी सर्वाणु एकदम किसको भेद से कहना और नीचे के वर्गणाओं के समागम से सदृश धन रूप से अन्य वर्गणा की उत्पत्ति संघात ज यानी संघात से जो होती है कही जाती है, परंतु ये दोनों यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत वर्गणाओं का अभाव है। यानी हमेशा एक ही महास्कंद वर्गणा पाई जाती है, अनेक नहीं, इसलिए वो भेद से और दूसरी तैयार हुई है, संघात से नहीं तैयार, ऐसा कुछ नहीं होता। एक ही एक है, उसमें से परमाणु चले जाएंगे या उसमें आकर मिल जाएंगे। इस प्रकार एक श्रेणी वर्गणा निरूपणा समाप्त हुई। पहले प्ररूपणा थी, ये निरूपणा की बात है, यानी वो कैसे तैयार होती है इसकी चर्चा यहाँ हो गई है।
एक क्वेश्चन था महास्कंद में, हम लोग ने जो जघन्य में जघन्य नंबर ऑफ परमाणु देखे थे, उसमें एक परमाणु बना, तो वो परमाणु स्वस्थान के अपेक्षा संगत से नहीं ले जा सकती है।
वही तो कह रहे ना, अनंत परमाणु आते जाते हैं, पर वो महास्कंद था ना ऑलरेडी, उसमें आकर मिला ना, कि अनेक वो पहली तो महास्कंद दूसरी थी और नए नए सारे उपचित हो गए, सब मिलकर दूसरी महास्कंद
तो स्वस्थान की अपेक्षा ही।
क्योंकि उसमें से जाते भी है आते भी है तो भेद संघात दोनों हो जाते हैं, क्योंकि पहली है और एक्स्ट्रा नहीं बनी, ऐसा तो नहीं हो रहा,
दो है।
ये तो ये एक श्रेणी वर्गणा हो गई। अब नाना श्रेणी वर्गणा निरूपणा इस प्रकार करनी चाहिए। नाना श्रेणी किसे कहते हैं? समाधान, सदृश धन वालों की मुक्ता फलों की पंक्ति के समान पंक्ति को नाना श्रेणी कहते हैं। मुक्ता फल ने मोतियों की पंक्ति, देखो ये बात पहले भी आई थी ना प्ररूपणा में, एक श्रेणी नाना श्रेणी। देखो 118 पेज पर जो 117 से शुरू होता है ना, मैंने क्रम से क्या क्या है, एक एक परमाणु से प्रति अनुवर्गना, संख्यात अनुवर्गना, असंख्यात अनुवर्गना वगैरह वगैरह हमने देखे थे। मैंने जघन्य से उत्कृष्ट कितना क्या है वो बताया था, वो एक श्रेणी वर्गना की बात हुई थी। और नाना श्रेणी वर्गना में वो कितनी होती है, तो सिंगल परमाणु वर्गना कितनी होती है तो अनंत होती है, दो प्रदेशी कितनी होती है, अनंत होती है। इस तरह से एट ए टाइम वर्तमान में वो वर्गनाएं कितनी होती है, सदृश धन वाली ने उनकी नंबर ऑफ परमाणु की संख्या सेम होनी चाहिए। इस प्रकार वर्गणा निरूपणा अनुयोग द्वार समाप्त हुआ। अने नाना श्रेणी वर्गणा भी ऐसे ही कहना चाहिए, ये इतनी बातें बताते हैं क्योंकि वो कितनी होती है वो पहले बता चुके थे उन्होंने। शंका, सूत्रकार ने 14 अनुयोग द्वार में से, ये 14 अनुयोग द्वार पेज नंबर 53 पर लिखे हैं, 53 पेज, पेज नंबर 53 निकालना। जब हमने कल भी देखे थे ना, तो वर्गना द्रव्य समुदाहर का प्रकरण था, उसमें 14 अनुयोग द्वार बताए थे। निकालो 53 पेज नीचे का पैराग्राफ, उसमें वर्गना प्ररूपना और वर्गना निरूपणा हुई, ये 14 में से 2 हुए। अभी उसमें से इतने 2 बताकर अभी प्रश्न क्या है उनका, सूत्रकार ने 14 अनुयोग द्वार में से 2 अनुयोग द्वारों का कथन करके शेष 12 अनुयोग द्वारों का कथन किसलिए नहीं किया, अजान का, अभी स्वयं ही बता रहे क्यों नहीं किया, अजानकार होने से नहीं किया यह कहना ठीक नहीं है, यानी उनको मालूम नहीं था इसलिए नहीं किया ऐसा कहना बराबर नहीं है, ऐसे स्वयं शंकाकार कहते, क्योंकि 24 अनुयोग द्वार स्वरूप महाकर्म प्रकृति प्रावृत के पारगामी, पारगामी उसके विशेषज्ञ जानकार भगवान भूत बलि को उनका अजानकार मानने में विरोध है। वो कहते वो तो उसके बिल्कुल विशेषज्ञ थे। अब कहते विस्मरणशील होने से नहीं किया यह कहना भी ठीक नहीं है, वो भूल गए हो गया ऐसा कहना भी बराबर नहीं है, क्योंकि अप्रमत्त का विस्मरणशील होना संभव नहीं है। मुझे वो पार्श्वनाथ की जो आता है ना पूजन, हमेशा वो लाइन खटकती है, मैं तो बोलती नहीं वो नाम कि भूलिए नहीं कदा, भगवान को बताते ना दीजिए मोक्ष भूलिए नहीं कदा, पार्श्वनाथ देव सेव, हाँ वो तो वो अच्छा नहीं लगता वो बोलने में, भूलिए नहीं कदा, हाँ उन्हीं के हम कहते हैं, परंतु वो अर्घ्य के रूप में कहीं कहीं देते हैं, तो भगवान को भूलिए नहीं कदा कहते हैं, वो अच्छा नहीं लगता कहने में। यहाँ कहते हैं ना अप्रमत्त का विस्मरणशील होना संभव नहीं है, देखो 135 पेज पर। तो ये उन्होंने प्रश्न, उनको क्या पूछना था, 14 में से 2 ही अनुयोग क्यों बताए, समाधान, यह कोई दोष नहीं है क्योंकि पूर्व आचार्यों के व्याख्यान के क्रम का ज्ञान कराने के लिए शेष 12 अनुयोग द्वारों का कथन नहीं किया है। फिर शंका, अनुयोग द्वार वहीं पर उसके सकल अर्थ का कथन संक्षिप्त वचन कलाप के द्वारा किसलिए करते हैं, यानी वहीं पर उन्होंने केवल वो सभी नाम बताए और बाद में तो उसका संक्षिप्त कथन हो गया, बाद में उसका विस्तार क्यों नहीं किया। समाधान, वचन योग रूप आश्रव के द्वारा प्राप्त होने वाले कर्मों का निरोध करने के लिए अनुयोग द्वार सकल अर्थ का संक्षिप्त वचन कलाप के द्वारा कथन करते हैं। ये योग यह है वो आश्रव है, तो कहते वो नहीं चाहते ज्यादा, इसलिए पूर्वोक्त 2 अनुयोग द्वारों का कथन देशामर्शक है ऐसा जानकर शेष 12 अनुयोग द्वारों का कथन करते हैं, यथा यानी वहाँ उन्होंने तो इतना ही बताया, तो यहाँ वीरसेन स्वामी उसका विस्तार से बता रहे। एक श्रेणी वर्गणा, देखो अभी वहां से नंबर पेज नंबर 53 देखो, थर्ड पॉइंट। हाँ, उसमें क्या लिखा था, वर्गणा ध्रुव अध्रुव अनुगम। ये वर्गणा ये ध्रुव है कि अध्रुव है उसकी बात है, तो उसका उत्तर दे रहे हैं यहां पर। यथा एक श्रेणी वर्गणा ध्रुव अध्रुव अनुगम की अपेक्षा परमाणु पुद्गल द्रव्य वर्गणा क्या ध्रुव है या क्या अध्रुव है। यानी ऐसा कभी होगा कि परमाणु द्रव्य वर्गणा ही नहीं होगी, विश्व में सारे स्कंद ही होंगे?
नहीं होगा,
ऐसा कभी नहीं होगा। हमेशा ही परमाणु द्रव्य वर्गणा पाई जाएगी, कहते ध्रुव है, क्योंकि अतीत अनागत और वर्तमान काल में एक प्रदेशी परमाणु पुद्गल वर्गणा का विनाश नहीं होता। यानी अनंत सिंगल सिंगल परमाणु भी हमेशा पाए जाएंगे, ये उसका अर्थ है। शंका, ऐसा होने पर एक परमाणु का परमाणु रूप से सर्वदा अवस्थान प्राप्त होता है। देखो क्या है इसमें से शंकाकार की भ्रांति क्या हो रही है, परमाणु हमेशा परमाणु रूप से रहेगा वो नहीं कहते। हाँ, परमाणु के स्कंद हो जाएंगे, परंतु दूसरे स्कंदों में से परमाणु निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? परमाणु रूप से हमेशा कोई ना कोई परमाणु वहां पाए जाएंगे, ये उनका कहना है। तो उसने प्रश्न क्या पूछा, एक परमाणु का हमेशा परमाणु रूप से अवस्थान होता होगा क्या? तो कहते समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि एक परमाणु के नष्ट होने पर भी तज्जातीय अन्य परमाणुओं के संभव होने से एक प्रदेशी वर्गणा के ध्रुव होने में कोई विरोध नहीं आता। क्या कहना चाहते हैं, अन्य कोई उसमें, जैसे मनुष्य जो है, मनुष्य गति में जीव हमेशा रहेंगे क्या नहीं रहेंगे? पर इतने मर रहे तो कैसे रहेंगे?
दूसरे जीव आ रहे हैं।
अरे उसमें आएंगे ना, अन्य से, देव से, नरक से, तीवन से, ये कह रहे। वो परमाणु स्कंद रूप से हुआ तो क्या हुआ, दूसरे स्कंद में से परमाणु छूटकर आएंगे ना। शंका, एक श्रेणी की प्ररूपणा में नाना श्रेणी प्ररूप परमाणुओं का ग्रहण कैसे करते हैं? एक श्रेणी प्ररूपणा में क्या कहते हैं, ये सिंगल प्रदेशी, एक प्रदेशी वर्गणा होती है, दो प्रदेशी होती है, तीन प्रदेशी होती है। तो यहाँ कहते हैं अनंत परमाणु उस रूप से होते, ये उसमें क्यों कह रहे? वो तो नाना श्रेणी, यानी एक एक वर्गणा में नंबर ऑफ वर्गणाएं कितनी होती है वो नाना श्रेणी हुई, और एक श्रेणी में एक प्रदेशी है, द्विप्रदेशी है, तीन प्रदेशी, वो एक 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 श्रेणी हो गई। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, नीचे यह कोई दोष नहीं, क्योंकि इसी परमाणु से एक श्रेणी का ग्रहण होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। श्रेणी यानी जो हम कहें ना, एक प्रदेशी जो है, एक प्रदेशी नहीं, सिंगल सिंगल परमाणु, या पर्टिकुलर परमाणुओं को वर्गणा नहीं कहा है,
एक प्रदेशी
है बस, सिंगल परमाणु है उसको वर्गणा कहा है। उसमें वो परमाणु निकल जाए, दूसरा परमाणु आए, तो भी उसको एक प्रदेशी कहेंगे, उसके वर्गणा का नाम वर्गणा वही रहेगा। अब द्विप्रदेशी वर्गणा से लेकर ध्रुवस्कंद वर्गणा तक, ये ध्रुवस्कंद वर्गणा 14वें नंबर की है। आप नंबर गिनाएंगे अश्विन भाई?
एक प्रदेशी, संख्यात प्रदेशी,
एक प्रदेशी, संख्यात प्रदेशी,
असंख्यात
प्रदेशी, अनंत प्रदेशी,
आहार वर्गणा,
ये तो चार हो गए। फिर पांच ग्राह्य और बीच वाली चार अग्राह्य, नौ चार तेरह,
और
उसके बाद ध्रुवस्कंद 14वीं है ना। द्विप्रदेशी वर्गणा से लेकर ध्रुवस्कंद वर्गणा तक ये वर्गणाएं क्या ध्रुव है या क्या अध्रुव है, यहाँ पहले के समान कथन करना चाहिए, क्योंकि ध्रुवत्व के प्रति कोई भेद नहीं है। यानी वो ध्रुव है, यानी हमेशा ही द्विप्रदेशी, त्रिप्रदेशी, चार, सभी हमेशा ही पाए जाएंगे। जो सांतर निरंतर द्रव्य वर्गणाएं, अभी सांतर निरंतर किसको कहेंगे, वो जो रेंज है जगन्य और उत्कृष्ट की, उसमें बीच बीच में एक एक से बढ़ते हुए कुछ है, फिर बीच में गैप है, फिर एक एक से बढ़ते हुए, फिर बीच में गैप है, अंतर सहित निरंतर, निरंतर कहीं फिर अंतर, फिर निरंतर, फिर अंतर, परंतु ये जहाँ अंतर है वो ध्रुव रूप से अंतर नहीं है,
नहीं है वो अध्रुव रूप से,
यानी कभी वो जहाँ निरंतर के स्थान छुटकर वहाँ
परमाणु आ सकते
हैं, आ सकते हैं। तो कहते सांतर निरंतर द्रव्य वर्गणा है, ये जो 15 नंबर की है, अशून्य रूप है, वे अशून्य रूप से क्या ध्रुव है क्या अध्रुव है, यानी उसमें जहाँ गैप है, सांतर यानी निरंतर चल रहे स्थान, फिर बीच में कुछ गैप है, फिर निरंतर स्थान है, तो ये जो बीच में जो अंतर छूटा है
वो
जो अशून्य, अशून्य ने निरंतर स्थान है, तो क्या हमेशा अशून्य रहेंगे वो ध्रुव रूप से रहेंगे, कैसे है, यानी अशून्य रूप है वो अशून्य रूप से क्या ध्रुव है क्या अध्रुव है, तो कहते अध्रुव है। समझ में आती इसकी बात? देखो जैसे हम मानते ना 1000 से लेकर 1200 तक कंटिन्यूस है, 1201 से लेकर 1500 तक कुछ नहीं है, फिर 1501 से लेकर कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस है इसको अशून्य कहेंगे, वो क्या हमेशा ही वैसे रहेंगे? तो ऐसा नहीं हो सकता कि 1001 के बदले में बीच में गैप है और फिर 1010 से शुरू हो गया, कुछ भी हो सकते उसमें, अशून्य हमेशा अशून्य है और शून्य हमेशा शून्य, ऐसा कभी नहीं होगा। तो कहते वो अध्रुव कहेंगे उसको, क्योंकि अशून्य रूप से उनका सदाकाल अवस्थान नहीं रहता। सदृश धन वाले सब स्कंधों के विनष्ट होने पर वर्गणा का अभाव होता है, तथा एक भी स्कंध के रहने पर वर्गणा है ही, ऐसा अर्थ यहाँ ग्रहण करना चाहिए।
ये समझते सदृश धन वाले सब स्कंधों के विनष्ट होने पर,
सदृश धन वाले जो हमने कहा ना अभी, हमने कहा 1001 से लेकर 1200 तक, यानी 1000 वाले वो सदृश धन वाले, तो 1000 वाले कितने हैं, 100 है मान लेते हैं, एक 1001 वाले इतने हैं, 1002 वाले इतने हैं, 1003 वाले इतने हैं, तो वो सबका नष्ट नाश हो गया। हम कहेंगे वो 1200 के बाद जो थे, जो नहीं था ना वहाँ पर, शून्य थे, कौन से 1201 से लेकर 1500 तो शून्य थे, तो वो वाली उत्पन्न हो गई, ये हो सकता है? और अगर उसको 1200 वाले को या 1001 वाले को कुछ रहेगी तो उसके विद्यमान है, और सबका नाश हुआ तो शून्य हो गई, फिर अशून्य से शून्य, शून्य से, ऐसा हो सकता है, और वर्गणाओं की संख्या भी हीनाधिक होगी। सदृश धन वाले ने उतने परमाणु की संख्या वाले वर्गणाएं, शून्य वर्गणाएं शून्य रूप से क्या ध्रुव है या क्या अध्रुव है, कहते अध्रुव है, क्योंकि जहां नहीं थी वहां फिर से दोबारा उत्पन्न हो गई, इसीलिए उसका नाम ही सांतर निरंतर है, क्योंकि शून्य का अर्थ है परमाणु से रहित वर्गणाएं, किंतु उनका शून्य रूप से सदा अवस्थान नहीं रहता। हमने कहा वो रेंज वाली कुछ वर्गणाएं उत्पन्न होती रहती, वो उनका अभाव होता रहता है, इस तरह से नीचे की वर्गणाएं संघात से और ऊपर की वर्गणाएं भेद से उस काल में शून्य वर्गणा को अशून्य रूप करती है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। यानी ऊपर की जो हमने मान लेते हैं 1500 वाली, उसमें से कुछ परमाणु चले गए तो 1200 वाली हो जाएगी, इस तरह से उसका अर्थ लेना। शून्य वर्गणाएं और अशून्य वर्गणाएं भी वर्गणा देश की अपेक्षा ध्रुव है।
वर्गणा पाई जाएगी।
हाँ देखो वर्गणा देश किसके कहते हैं, शंकाकार ने पूछा वर्गणा देश किसे कहते हैं, क्योंकि वर्गणा देश की अपेक्षा ध्रुव है। समाधान, वर्गणाओं के संभव सामान्य को वर्गणा देश कहते हैं, यानी उनकी पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, कभी ना कभी होगी ना वो, तो इसीलिए उसका नाम सांतर निरंतर है। जो अभी वर्तमान में शून्य है वो अशून्य भी हो जाती है, और अशून्य वो शून्य भी होती है, इस तरह संभावना है उनकी होने की, इसके लिए संभव सामान्य को कहेंगे तो उनका सद्भाव पाया जाएगा। उस वर्गणा देश की अपेक्षाएं सब वर्गणाएं सर्वदा है, इसलिए ध्रुव है। ये समझ में आई ना बात, जो शून्य कभी अशून्य वर्ध सामान्य से वो तो हमेशा रहेगी ही रहेगी, ये उसका अर्थ है। जो भव्यों के योग्य प्रत्येक शरीर वर्गणाएं अभी ये शांतर निरंतर तक तो बात हुई, तो हमने चौदह तक तो सभी ध्रुव है बताया। शांतर निरंतर में शून्य और अशून्य को अलग अलग सोचेंगे तो अध्रुव है, परंतु सामान्य से लेंगे तो वो ध्रुव है। अब उसके ऊपर की कौन सी प्रत्येक शरीर वर्गणाएं जो है नंबर सोलह ने बीच में अशून्य वर्गणाएं चली गई, तो प्रत्येक शरीर वर्गणाएं सहयोगी और अयोगी जीवों के प्राप्त होती है, वे शून्य रूप भी है और अशून्य रूप भी है। देखो शून्य और अशून्य क्यों कहा, क्योंकि हमने वो जो उसके अलग अलग विकल्प देखे थे एक एक परमाणु से बढ़ते हुए। प्रत्येक शरीर वर्गणा का जगत ने कहा देखा था, क्षपित कर्मोशिक से आए हुए चौदहवें गुणस्थान के अंतिम समय में, फिर उसमें से अलग अलग हमने विकल्प देखे थे, क्योंकि विसर सोप से बढ़ाओ, औदारिक शरीर बढ़ाओ, औदारिक शरीर की अवगाहना बढ़ाओ, इस तरह से। तो कहते कि वो कितने ही स्थान ऐसे होंगे कि वो नहीं पाए जाएंगे ना, क्योंकि एट ए टाइम कितने जीव हो सकते हैं, संख्यात हो गए ना। हाँ। तो कहते कि वे शून्य रूप भी है और अशून्य रूप भी है, क्योंकि सब जीवों से अनंत गुणे सहयोगी अयोगी प्रायोग्य प्रत्येक शरीर वर्गणा स्थानों में से वर्तमान काल में संख्या जीव ही उत्पन्न होते हैं। क्या कहते हैं, स्थान कितने बताए, जीवों से अनंत गुणे, क्यों, विसर एक एक शरीर के परमाणु के साथ ही विसर सब से अनंत होते हैं, कितने जीवों से अनंत गुणे। तो हमने तो एक एक प्रदेश से बढ़ते हुए जो इतने स्थान देखे है जीवों से अनंत गुणे है, और उसमें से अभी तक जो सिद्ध हो चुके हैं उसकी अगर बात करेंगे, या वर्तमान में कितने हैं, तो दो चार हो गए ना उसमें, समझ में आती है बात। तो इतने जीवों से अनंत गुणे विकल्प क्या कभी बनेंगे, तो कितने ऐसे होते कभी भी नहीं हो गए, क्योंकि पूरे जीव कहाँ मोक्ष जाने वाले, जीवों का अनंत मां भाग जो सिद्ध राशि है
वो ऐसे ही रहने वाले,
वही जाएंगे ना। तो वर्तमान में तो सभी हो गए नहीं, दो चार तो हो गए अयोगी के अंतिम समय में, एक एक समय में कहीं पर भी, यही कह रहे हैं कि वर्तमान काल में संख्यात जीव ही उपलब्ध होते हैं। यह कहना कि संख्यात जीव वर्तमान काल में सब जीवों से अनंत गुणे प्रत्येक शरीर वर्गना स्थानों को भर देंगे, ठीक नहीं है, क्योंकि दो चार जीव तो दो चार स्थानों को ही बताएंगे, क्योंकि ऐसा होने में विरोध आता है। यहाँ जो वर्गनाएं शून्य है वे शून्य रूप से अध्रुव है, जो अभी है नहीं है वो कभी हो सकती है, इसलिए शून्य रूप से अध्रुव है, क्योंकि सर्वदा इस वर्गना को शून्य रूप ही होनी चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। कभी न कभी किसी न किसी जीव को इतने परमाणुओं वाला पुंज वहाँ पाया जाएगा, कभी कभी हो सकता है, इसलिए हमेशा उसको शून्य रूप से कोई शून्य रूप नहीं होगी। जो वर्गनाएं अशून्य स्वरूप है वे अशून्य रूप से अध्रुव है, क्योंकि जो अभी वर्तमान में जो जीव जिनकी जो संख्या है पुद्गलों की वो हमेशा वो उतनी रहेगी, ऐसी कोई बात नहीं, अन्य जीव आएगा तो उसकी अन्य संख्या हो जाएगी। तो जो वर्तमान में जो अशून्य है वो कायम अशून्य रहने, हमेशा उतनी ही संख्या वाले जीव हो गए, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि उन वर्गणाओं का एक रूप से अवस्थान नहीं रहता। इसका अर्थ समझ में आता है, ऐसा नहीं है, शून्य रूप है उतने परमाणु वाला कोई जीव नहीं है। देखो प्रत्येक शरीर वर्गणा हम लेख रहे हैं, तो उसमें जघन्य किसको लिया, अयोगी के अंतिम समय में, क्या था उसमें, प्रत्येक शरीर वर्गणा क्यों कहा, वो जीव का तो प्रत्येक शरीर हो गया ना, बारहवें गुणस्थान में निगोद चले गए, वो प्रत्येक शरीर ही हुआ, तो प्रत्येक शरीर ही हुआ तो उसके छह पुंज है, औदारिक कारमान तेजस और उसके विसर सोच है, ये तो हो गई, तो उनकी संख्या पूरी टोटल उसको कहा प्रत्येक शरीर वर्गणा। तो प्रत्येक शरीर वर्गणा की जो संख्या है परमाणुओं की संख्या उसको एक एक स्थान कहा, वो परमाणु में एक परमाणु कम हो सकता है, एक परमाणु अधिक हो सकता है, कुछ भी विकल्प, अनंत विकल्प हो सकते हैं। वर्तमान में कितने हो गए, तो चार अयोगी के अंतिम समय में आए हुए, क्षपित कर्मांशिक रूप से आए हुए अयोगी के जो अंतिम समय में स्थित है वो जघन्य में जघन्य नंबर ऑफ परमाणु वाले जीव, मैक्सिमम चार हो सकते हैं, ये अभी बताए थे ना, नहीं तो बताएंगे अभी, हाँ पहले चार बताए थे। हाँ वो चार बताया था, शपित कर्मवंशिक के दो बताए थे और बाकी ऐसे मैक्सिमम आठ बताए थे। तो इतने हो सकेंगे, तो उतनी ही संख्या में हमेशा जीवों को उतने ही परमाणु हो गए ऐसा कुछ निश्चित नहीं है।
अलग अलग होते
हैं, अलग अलग होगी ना, क्योंकि शरीर की अवगाहना जुदी जुदी होती है और उतनी अवगाहना एग्जैक्ट होने पर भी उसके प्रदेश हीनादिक हो गए और उसके विसर्गोपचय में हीनादिकता हो सकती है। इस शून्य एने अभी चार जीव है,
परमाणु वाले जीव
तो चार जीवों की जो कोई अलग अलग संख्या है वहां पर, किसकी परमाणुओं की संख्या अलग अलग है, तो हमेशा उतनी संख्या वाले जीव हो गए क्या? नहीं, अलग संख्या वाले हो गए। तो जो उतनी संख्या वाले है वो अशून्य है
और बाकी शून्य है,
और जो अनंत बाकी अनंत विकल्प नहीं है वो शून्य रूप है। अशून्य ने एग्जिस्टिंग जो है उसको अशून्य कहेंगे। नहीं नहीं नहीं, शून्य का अर्थ अलग होता है। देखो शून्य ने वो है ही नहीं, अपन यहाँ तो एक किसी वर्गना की बात है। अभी वो जो सांतर निरंतर में शून्य अशून्य की बात अलग थी, वहाँ वो रेंज वाली नहीं थी, और यहाँ यहाँ कौन सा जीव है उसके परमाणु कितने हैं उसकी
वो,
बात
है।
एट ए टाइम वर्तमान में वो ध्रुव है क्या अध्रुव है, यानी उतनी ही संख्या वाले क्या हमेशा पाए जाएंगे? तो क्या नहीं, दूसरे समय में कोई अयोगी हुआ तो उसके नंबर ऑफ परमाणु जुदे हो गए, अन्य विकल्प। शून्य यानी जो अन्य विकल्प जो अभी नहीं है, अभी के जो जीव है चार हो या आठ हो,
अभी आठ ही अशून्य है,
जो है वो
अशून्य है,
बाकी सब शून्य है। अब यही रुकेंगे हम, 137 पेज पर कल से शुरू करेंगे। जावानी के ज्ञान ते सूजे लो कालो सोवाणी मस्तकनम सदा देखो। अश्विन
नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो ऊर्जाणम नमो लोय संपत्तावणम नमो ओरियंताणम नमो